अरे अब लाइक योग याद स्मृति
योग याद स्मृति
योग याद स्मृति स्मृति दृष्टि वृत्ति
वृत्ति पहले वृत्ति या स्मृति
जो भी आ गया वृत्ति वृत्ति और स्मृति दृष्टि वृत्ति और स्मृति पहले वृत्ति फिर उसकी स्मृति और फिर दृष्टि एक तो ये भी हो सकता है या फिर
कहीं कहीं वृत्ति पहले
समय वैसा स्वरूप
कई बार किसी चीज को याद करने के बाद संकल्प चलता है कई बार वो संकल्प इतने बार आ गया कि वृत्ति बन गई तो फिर वो
बार बार स्मृति करने से वो वृत्ति बन गई
बार बार दृष्टि जैसे दृष्टि होगी बार बार उसको स्मृति करते करते फिर वृत्ति में वृत्ति होगी
कोई कोई चीजें देखी भी नहीं है वो भी स्मृति में है
वो वृत्ति
तो वहाँ स्मृति पर
स्मृति से दृष्टि
थोड़ी थोड़ी है
ये
सब देखने के बाद ही स्मृति होती है बिना देखे भी स्मृतियाँ हैं आत्मा में जन्म जन्म की स्मृतियाँ हैं तो तीनों भी हो सकते हैं एक साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते और क्या बोला था तुम ना किसी के चक्कर में हो ना किसी के चक्कर में हो ना किसी की कंप्लेंट करो ना कोई तुम्हारी कंप्लेंट सेकंड पार्ट हमारे हाथ में है क्या हमारी कंप्लेंट कोई ना करे ये नहीं हमारे हाथ में नहीं पर हम किसी की कंप्लेंट ना करें बच्चे अमृत वेले क्या करते हैं
कंप्लेन
वरदान मांगते हैं या दूसरों की शिकायत करते हैं शिकायत उलाना और
दिल शिकस्त
तो दादी ने कहा ना किसी की कंप्लेन करो ना ही किसी ना कोई तुम्हारी कंप्लेन करो कुछ मांगो नहीं दादी ने बोला कुछ मांगो नहीं कार जबरदस्त पॉइंट बोली माता जिसमें ज्ञान नहीं है वो मानते हैं शक्ति दो मदद दो अरे बाप समर्थ स्वरूप है तुमको समर्थी देने वाला है तो तुम लेने वाले हो या देने वाले हो समर्थी बाप तो आते ही तुमको अधिकारी बनाता है तुम लेने वाले
बड़ी दादी का भी पॉइंट है ज्ञान में पहले माना जब दादी नहीं संसदी रही तो उसमें की इच्छाएं जो माना वो अज्ञानी तो दादी मांग के नहीं थी घर में भी माँ बाप से कुछ मांगा नहीं
और बताओ
दादी ने जो लास्ट में बोला ना
प्रभाव नहीं
किसी ने पूछा कि क्या इच्छा है दादी आपकी तो दादी ने कहा कि कृष्ण को देखूं
जन्म लेते हुए
न पहले न बाद बीच में वो देखना
एक ये बोला दादी ने ये कहा मधुबन में है शांति वन वो भी नहीं है मैं तो बाबा के साथ
बाबा के साथ
और एक दूसरी एक पॉइंट अच्छी बोली जो आज की मुरली में भी है वैसे की वैसी पॉइंट है आज की मुरली में जो दादी ने बोली
आज की मुरली में
जो हूँ जिसका हूँ मुरली में है जो हूँ जिसका जैसा हूँ जिसका हूँ और दादी ने बोला कौन हूँ किसका हूँ कौन हूँ मैं ये स्मृति ही बहुत पहला और अंतिम पार्ट विद्यालय मैं कौन यही पहली पहली और अंतिम पहली है बाबा ने मैं कौन
और किसका
मैं कौन कितना बड़ा प्रश्न है इसी प्रश्न ने द्वापर युग से आत्मा को उलझा के रखा है किसी ने क्या कहा किसी ने क्या कहा किसी को पता नहीं चला मैं कौन किसी ने स्वयं को भगवान माना किसी ने स्वयं को भगवान का दास माना किसी ने दासो हम दास उसके दास का दास माना उसके दास
हम दास
पर किसी को भी संपूर्ण परिचय नहीं था उसका
बाकी जितने भी दास थे चाहे वो सूरदास थे चाहे तुलसीदास थे चाहे वो सब बड़े भगवान के बड़े प्रेमी
वो कहाँ है इस समय
यही नहीं है
मीरा कहाँ है मीरा कहाँ है संजय भाई मीरा कहाँ होगी विवेक क्या कहता है मीरा कहाँ है
भक्ति की है तो जरूर भगवान की मात होनी चाहिए।
ज्ञान में है या नहीं है?
मीरे हैं हम ज्ञान के मीरा।
नहीं नहीं भक्ति की जो मीरा थी वो इस
समय
कहाँ
है? इस समय वो प्रश्न है।
ज्ञान में जरूर होगी।
नहीं
होगी या नहीं होगी प्रश्न ही
है।
भक्त मालूम है।
भक्त माला में हम नहीं पाते ना, हमसे ज्यादा भक्ति कितने की होगी?
दो पार्ट है, एक तो बाबा ने हमेशा कहा है कि मीरा को साक्षात्कार हुए पर वो इसके वजह से वैकुंठ में थोड़ी जाएगी, पर ये सारी बातें उसकी साक्षात्कार के लिए कही है। पर ऐसी आत्मा की जिसका कृष्ण से ऐसा प्यार, इतना अधिक प्यार कि जो भगवान आकर भी उसके प्यार की महिमा गाते हैं, वो आत्मा संगम पर ब्रह्मा बाप के आस पास नहीं हो, ये हो नहीं सकता। उसको यही होना है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने लोक लाज सब छोड़ दिया, जो उसकी याद में इतनी मगन थी, ऐसी मीरा संगम युग पर वही आत्मा जब ब्रह्मा बनकर आ रही है सृष्टि मंच पर, तो उसके साथ उसका प्यार ना हो, क्या ये संभव है?
क्या बाबा उसको खींचेगा नहीं? इतना प्यार करने वाला,
इतनी प्यार की सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज इतना सहन किया उसने,
क्यों नहीं ज्ञान में आएगी?
वो तो आना ही है उसको, इधर ही है वो।
माना भक्ति में
इतना उसने सहन किया, लोग कहे क्या, लोग कहे बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे, इतना सब सुना उसने तो नहीं हो, ये नहीं
हो।
जितनी हिंदू धर्म की आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं जिनका हीरो पार्ट है, वो सब यहाँ है, क्योंकि यहीं पर उनका हीरो पार्ट होगा, तब वो जाकर द्वापर युग से उनका हीरो पार्ट होगा। फिर भी बाबा कहते हैं एक भक्त माला भी है, एक भक्तों की अपनी एक माला है जो ज्ञान में नहीं होगी, पर जो भी बाबा ने ये भी कहा है कि सबसे पहले भक्ति तुमने की, सबसे ज्यादा भक्ति तुमने की, तुमने ही शास्त्र लिखे, तुमने ही शास्त्र पहले पढ़े, जो सबसे जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है वही सबसे पहले यहाँ आएगा, जिसने सबसे ज्यादा पहले भक्ति की है वही सबसे पहले सतयुग में भी आएगा।
भक्ति का मिलना उससे मिलेगा,
ज्ञान में भी सिखाओगे। तो ये तो बाबा ने बातें कही है, भले बाबा ने ये भी कहा है कि भक्तों की माला अलग है, परंतु ये सारी बातें भी कही, तो इस सब को देखते हुए ये ही कहा जा सकता है कि संसार में जो भी महान आत्माएं हुई है, चाहे वो चाणक्य है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, जिन्होंने इतिहास को बदला, ऐसी संसार की महाभारत की महान आत्माएं,
जगदीश राय को बोला था भगवान ने अपना छोटी सी किताब में बदल कि तुम ही संजय थे और तुम्हें ही शास्त्र को सुधारना है।
बाबा ने ये भी बोला है, तुम सब संजय हो।
सब संजय,
तुम सब संजय, संजय को एक नहीं है,
लेकिन इसमें ओरिजिनल संजय ये है
अभी। ऐसे ब्रह्मा हो ऐसे क्यों है?
संसार में सृष्टि के मंच पर जो भी हीरो एक्टर्स आए हैं, वो सब हम हैं, यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ उनका बहुत श्रेष्ठ पार्ट है, तभी तो भक्ति में भी उनका
निरंतर। और दादी ने बोला कि ना किसी को प्रभावित करना है ना प्रभाव में
प्रभावित होना है,
तीनों चीजों से तुमको प्रभावित नहीं होना है, अव्यक्त वाणी है एक, पांच तत्वों से तुमको प्रभावित नहीं होना है। आज सुबह बता रहे थे महेश भाई, पांच तत्वों से प्रभावित नहीं होना है, पांच विकारों से प्रभावित नहीं होना है, और जो भी विभूतियां हैं, महान आत्मा है, कोई भी संसार में इस समय किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। बाप से प्रभावित होने वाले संसार के किसी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकते। विकारों की तरफ आकर्षण है ना, विकारों में भी आकर्षण है, पांचों विकारों में आकर्षण है। बाबा ने कहा ना उस मुरली में, इतनी जबरदस्त मुरली थी अभी पवित्रता पर, एक मुरली पूरी
पागल हो जाती,
एक दूसरे की शक्ल में पागल हो जाते हैं, रह नहीं सकते एक दूसरे को देखे बिना। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का देह में मोह है, ये तुम्हारा पुराना ममत्व है। जैसे मैं इस तन में रहता हूँ वैसे तुम इस तन में, जैसे मैंने ये लोन लिया है तुम भी ऐसा समझो, मैं इस तन में मरा हुआ हूँ तुम इस तन में मरे हुए हो, ये पुरानी जूती है, ये पुराना शरीर है, इसमें मेरा कोई मोह नहीं, मैं इसमें फंसा नहीं हूँ, मैं तो तुमको छुड़ाता हूँ, तुम इसमें फंसे हो।
बार बार बोला है कि
कितनी सारी बातें हैं, जन्म जन्म का तुम्हारा मोह है, इतना मोह है कि बात मत पूछो बाबा ने कहा। बहुत अच्छा समझाती है, क्या कहते हैं घर जाकर याद करते हैं कि बहन जी बहुत अच्छा समझाती है, बहुत मीठी। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी तो आत्मा है, शरीर मीठा है क्या?
ये भी माया का वार है,
ये भी माया का जबरदस्त त्योहार है।
किसको शरीर अच्छा लगता है, किसको बातें अच्छी लगती है?
शरीर का तो इतना प्यार है कि शरीर ही अच्छा लगता है। आज की मुरली में भी बोला ना, तुम्हारा शरीर से बहुत प्यार है, इसके लिए तो देहवान में आते हो, वैभव व्यक्ति में तुम्हारा प्यार है,
लगन रही है ना शरीर से।
आत्मा, एक मुरली का प्रश्न था, आत्मा को सबसे अधिक प्यार किससे है? उत्तर था देह से। सबसे अधिक प्यार आत्मा को, देह के अधिक उसको कुछ, भले ये देह नश्वर है, विनाशी है,
रोगी है,
रोगी ऐसा रोगी हो जाते हैं फिर भी शरीर नहीं छोड़ती आत्मा, ये नहीं निकलना चाहती। रोगी रहेगी, महीना महीना चलेगा, रोग छूटना छोड़ती नहीं है शरीर, इतना मोह है आत्मा को।
बड़ी शांति 5 साल रही, और ये
तुलसी माता तो बीमार नहीं होती, इतनी खुश रहती है। हम जो गए ना, वो पहले पूछ लेती है, कैसे हो भैया, है ना?
बोलती
जाना चाहिए मिलने, मधुबन निवासी आते तो उसको बहुत खुशी होती है, तो कम आते
हैं, पहचानती है वो,
कोई नहीं आता है, कम क्या, कोई नहीं आता।
कल जाते हैं सब,
वो अभी बोलती है, उसको हमने बताया पुष्पाल दादी तो शरीर छोड़ दिया, तो पूछती है मैं कब छोड़ूंगी।
जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा।
सच में उन्होंने बहुत सेवा की है, टोली पैकिंग करते थे,
बिंदु माता भी नहीं जा सकते हैं।
जब तक आत्मा सारे हिसाब किताब नहीं चुप करके शरीर के साथ, तब तक नहीं छोड़ सकते,
कितनी भी इच्छा हो उसको,
शरीर के साथ ही तो हिसाब किताब है हमारा। जो भी जन्म जन्म जो कुछ किया है वो इस शरीर के द्वारा भोगना है, एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भोगेंगे, एक ये शरीर के द्वारा भोगेंगे, और तीसरा दूसरी आत्माओं से उत्पन्न परिस्थिति, ये तीन स्थिति से हम अपने जो भी किया हुआ कर्म है हिसाब किताब है चुकतु करेंगे।
एक मुरली इससे भी बहुत डीप है,
ये तीन पॉइंट है बाबा ने अव्यक्त वाणी 74 में, रोग द्वारा हमको रोग आएंगे, ऐसे ऐसे रोग आएंगे जो सोचा नहीं था कि ये भी आए,
स्वयं का भोगना वो अपने आप पता
पड़ेगा।
वहाँ पर तो रियल परीक्षा है, बीमारी होने के बाद जो परीक्षा होती है ना आत्मा में, जिस आत्मा में ज्ञान का बहुत श्रेष्ठ बल नहीं है, चिंतन नहीं है, वो कमजोर हो जाती है। भले योग बहुत किया होगा परंतु ज्ञान चाहिए, वास्तव में बहुत चिंतन चाहिए। बाबा ने कहा है तुमको एक एक, बाबा ने जो बातें बताई है एक एक बातों का चिंतन करो तो पॉइंट का चिंतन करो तो पॉइंट निकलेगी। पूरा याद रख लेना वो एक बात है, एक है एक ही पॉइंट का विस्तार करना और उसका चिंतन में मगन अवस्था हो जाती है एकदम।
जगदीश भाई ने बहुत अच्छा कहा, एक ही पॉइंट पर निरंतर सदा मतलब स्वस्थ रहना, वही करना,
अलग अलग रीति से सोचना उसको, अलग अलग रीति से
एक ही पॉइंट का चिंतन चलना चाहिए, लिंक में हो।
चलो आज क्या बोला बाबा ने,
मंत्र यंत्र
वर्तमान और भविष्य।
बाबा क्या देखते हैं, वर्तमान
और
अंतिम स्थिति देखते हैं। उसमें क्या देखा बाबा ने, कहीं कहीं अंतर देखा और कहीं कहीं महान अंतर, मतलब वो दोनों स्थितियां देखता है, वर्तमान भी देखता है और अंतिम स्थिति भी देखता है। वो हमको इसके लिए इतने बड़े बड़े ऊंचे सम्मान से देखता है क्योंकि उसको पता है कि यही वो आत्मा है जो उस अंतिम स्थिति को इन्होंने पाया था। तो वर्तमान स्थिति भी देखते हैं, अंतिम स्थिति भी देखते हैं, और कहीं कहीं अंतर और कहीं कहीं महान अंतर। साथ ले जाने वाला एक पुरुष, लक्ष्य एक, सर्वोत्तम बनने का समय का वरदान और वरदाता का वरदान सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का रास्ता बताने वाला एक, साथ ले जाने वाला एक, फिर भी अंतर क्यों? ज्ञान एक, मुरली सबके लिए एक, समय वही अमृत वेले का एक फिर भी अंतर। ज्ञान देने वाला सबको सेम ज्ञान देता है, सबको उतना ही प्यार करता है, प्यार का सागर, फिर भी अंतर क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी कल परसों की अव्यक्त साकार मुरली थी ना, कि किसी में ताकत नहीं है, सैटरडे की मुरली, किसी में ताकत नहीं है कि जो बाप समान ज्ञान सुना सके, पर समझने वाले भी नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं समझेंगे। अभी सैटरडे की मुरली थी ना,
बाप जैसा समझाते ऐसा कोई नहीं,
कोई नहीं समझा सकता है, वो भी एक पॉइंट है, पर इतनी ताकत किसमें नहीं है कि वो वैसा समझाए जैसा बाप समझाते है, पर समझने वाले में भी नंबरवार है। एक ही बात 10 लोगों को समझाए तो वो 10 लोग अलग अलग रीति से उसको लेंगे। लास्ट टाइम बोला था ना, बाबा एडवांस में ले जाना चाहते हैं, बट बच्चे उसका उल्टा एडवांटेज ले लेते हैं। कही एक बात पर उसको समझने में सबने अलग अलग समझा। इसके लिए वो कहानी है ना हाथी की, अंधो अंधे की और हाथी की, पूरा देखना पड़ेगा हाथी के, नहीं तो हमको देखेगा केवल ये दीवार है, किसी को लगेगा खंभा है, किसी को लगेगा ये तो ऊंट, ये है, अलग अलग लगेगा। तो ज्ञान भी ऐसा, इतना बाबा ने इतना अथाह ज्ञान दिया है, अथाह। एक दूसरा प्रश्न है कि क्या टीचर का, बाप का टीचर का पार्ट चालू है या समाप्त हो गया? चालू है या समाप्त हो गया?
टीचर का पार्ट चालू तो है,
टीचर पढ़ाता है,
टीचर
पढ़ाने आ रहा है अभी कि मिलने आ रहा है, आशीर्वाद देने आ रहा है, प्यार करने आ रहा है, हाथ उठवाने आ रहा है, मिलने आ रहा है, पढ़ाना हो चुका है, पढ़ाना अभी कहाँ मुरलियों में, अभी कहाँ वो गहराई वो जो थी, कितना पढ़ाएगा, पढ़ा के हो गया? दृष्टि देने आता है, शक्तियाँ भरने आ रहा है, समय का इशारा देने आ रहा है, अचानक का दृष्टि देने आ रहा है, शक्तियाँ भरने आ रहा है, मिलने आ रहा है। टीचर का पार्ट अभी कहाँ है, कब तक पढ़ाएगा टीचर भी, पढ़ाते ही रहेगा क्या अंतिम लास्ट तक?
लेकिन बोला है
वो तो बाबा ने अलग रीति से बोला है कि जब तक लड़ाई नहीं होती तब तक पढ़ाई चलेगी, वो अलग पॉइंट है, पर अभी बाबा जो है, बाबा का वर्तमान पार्ट है वो शक्तियों भरने का पार्ट है, मिलन बनाने का पार्ट, गहराई जो थी ना वो अभी सूक्ष्म बात है समझने।
एक संपूर्ण बन गया तो उस हिसाब से तो पढ़ाई पूरी हो गई,
पढ़ाई तो तभी पूरी हो गई थी,
साकार पढ़ाई पूरी हुई कैसे संपूर्ण बन सकता
है?
वो पढ़ाई तो 26 जून 1968 की मुरली, बच्चे पढ़ाई पूरी हुई है, बाप मिलने आते पढ़ाई तो तभी, क्या बिना पढ़ाई के संपूर्ण ज्ञान के ब्रह्मा संपूर्ण बन गया? विचारणीय प्रश्न है। अगर हम सोचते हैं कि अभी भी पढ़ाई, बाबा ने बहुत सारी बातें अभी तक जो बताई नहीं है, हम दूसरों को बोलते हैं ना कि अभी तक ये बाबा ने बताया नहीं है, क्या ये कब तक बोलते रहेंगे? क्या बिना संपूर्ण पढ़ा ज्ञान की ब्रह्मा संपूर्ण बना? हो नहीं सकता, पढ़ाई हो चुकी है पूरी, अभी तो रिवाइज कोर्स हो गया, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, वो भी पूरा हो रहा है।
मुरलियां तो पीटी होती है अभी जो भी है, 95 तक की है मैक्सिमम, तो उसके बाद तो सब पीटी
बात तो रिपीट है। बहुत बहुत सूक्ष्म है, जितनी मुरलियां सूक्ष्म है उसको समझने के लिए भी हमको भी उतना सूक्ष्म बनना पड़ेगा।
इतना दिव्य गुणों से भरी हुई है वो, और शक्तियों से हर मुरली है,
वही एक वाक्य ही महावाक्य है,
एक मुरली भी अगर जीवन में उतर जाए ना
अभ्य यही कर रहे थे कि एक सप्ताह की मुरली वही पढ़नी चाहिए,
वही पढ़ाई
वो भी एक विधि है, पर ब्राह्मण ब्राह्मणों को नया चाहिए, पुराना माल लोरोज देंगे तो ब्राह्मण तो आना बंद कर देंगे, बहुत है वही तो थी कल की, ये भी एक सोच है, इसके लिए जो है वही चलेगा, पर जिसको ज्ञान की गहराई में उतरना है उसको वो स्टडी करना, इंडिविजुअल पुरुषार्थ फिर आगे क्या बोला, ये तो बताया कारण। बाबा ने पूछा कारण क्या, जबकि वरदाता का वरदान, समय का वरदान सबके लिए है, पद प्राप्त कराने वाला एक, पुरुषार्थ का रास्ता दिखाने वाला एक, सबका लक्ष्य एक, सर्वोत्तम बनने का, श्रेष्ठ बनने का, फिर भी अंतर क्यों? तो उत्तर अभी आगे, उत्तर क्या उत्तर?
मंत्र को भूल जाते
जैसा समय उसी अनुसार
वो आगे है। कारण पहले, कारण मंत्र और यंत्र। तो बाबा ने महामंत्र दिया है, कौन सा? बना भव। जैसे गुरु का उदाहरण दिया वहाँ पर, आज के मुरली में बहुत सारे उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। इस बात को समझाने के लिए बाबा ने गुरु का उदाहरण दिया है कि जैसे भक्ति में क्या करते हैं, गुरु से डरते हैं, ऐसा समझते किनारा कर लेंगे अगर मंत्र को भूल गए। परसों की मुरली थी ना, गुरु के आगे क्या करते
हैं,
हाथ जोड़ते
हैं।
जैसे तुमने समझा ही नहीं, मैं समझता हूँ कि तुमने जाना नहीं। और क्या करते वो गुरु के आगे?
मंत्र नहीं बोलते।
वो गुरु के लिए क्या क्या किया जाता है, ये विचार सागर मंथन का पॉइंट है। सबसे पहले तो उसका आमंत्रण दिया जाता है, फिर वो घर आता है तो उसको कहाँ बिठाते हैं? अपने तख्त पर बिठाएंगे जहाँ हम रहते, मतलब अगर कोई राजा होगा तो अपनी सीट पर बिठाएगा या बड़े आसन पे उसको बिठाएंगे। उसके बाद उसके पैर धोते हैं और क्या करते हैं, जल का पी लेते हैं,
पूरे घर में
छिड़काव लगाएंगे।
आप कभी गए गुरु के पास ऐसे?
मैं इस तरह की नहीं, पर हमने मतलब मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी।
अच्छा।
क्योंकि भक्ति का इतना सब पढ़ा तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि बिना गुरु के सदगति नहीं हो सकती। इसके लिए मैं बहुत दूर, वो स्वामी रंगनाथानंद उनकी उम्र थी उस समय 94, जो कि रामकृष्ण मिशन के हेड थे उस समय, जिन डायरेक्ट विवेकानंद के शिष्य थे, ये क्या पता है, रंगनाथानंद, बहुत बड़े स्पीकर है वो, अभी नहीं है। उनके द्वारा मेरी बेलूर मठ हावड़ा वहां गया था मैं, मुझे 50 घंटे लगे थे कर्नाटक नहीं कलकत्ता, कॉमन बुगी में बैठ के वहाँ छुप के सबसे, क्योंकि बहुत बड़ा भयानक बंधन था। वहाँ पर गंगा स्नान और फिर मेरी मंत्र दीक्षा हुई थी, मंत्र दीक्षा, और उसके बाद में वापस आया था, वापस वैसे ही 3 दिन रहकर।
घर वालों में पता नहीं मांगता
नहीं, वो जाने में दिया होता अगर पता चल गया होता। मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा था, मेडिकल ऑफिसर था, वहीं से छुट्टी लेकर गया था ताकि किसी को पता ना चले। तो और क्या करते हैं गुरु के पास?
यही करते जो आपने बताया।
फिर गुरु क्या करता है? गुरु मंत्र देता है, आशीर्वाद करता है, वो सब उधर किया जाता है भक्ति में।
भक्ति में उल्टा उठाया ना, साक्षात गुरु परम ब्रह्म, ब्रह्म को बोल दिया साक्षात गुरु,
वो गुरु के प्रति काके लागू पाए, गुरु गोविंद खड़े सामने, वो वैसी वाली बात है कि बलियारी उस गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए, गोविंद को जो दिखाने वाला है वो कोई साधारण नहीं हो सकता, ऐसे माना जाता है। इसके लिए गुरु की तो महिमा है भक्ति में, बहुत महिमा है। तो वो गुरु के बारे में आज बाबा ने कहा, फिर आ जाओ आज वापस मुरली पे आगे। तो जैसे वो मंत्र को भूलते नहीं, पर तुम यहाँ भूल जाते हो।
अधिकार के एडवांटेज
बाबा ने कहा, वहाँ पर डर रहता है पर यहाँ पर बच्चे बन गए, अधिकारी बन गए, तो इसकी एडवांटेज। इसके लिए भक्ति में एक तीव्रता होती है, भक्ति में एक लगन होती है, पाने की चाह होती है, एक तड़पन होती है, और ज्ञान में आने के बाद पेट भर जाता है, इसके लिए वो सब कम हो जाते हैं। नहीं तो भक्त की कितनी तीव्रता होती है, अगर उसको दर्शन नहीं हुआ तो वो अपने आप को काटने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे थोड़ी करता है कोई।
तो भक्ति की इच्छा होती है, भगवान से मिलने की इच्छा होती है,
बहुत
हमको सारी
भक्ति में बहुत तीव्रता होती है, बहुत
दुनिया है या दुनिया सब
यहाँ सब देखो भाई मुक्ति कहाँ है पता है, भगवान कहाँ है पता है,
वही बोला ज्ञान में आने के बाद आत्मा का पेट भर जाता है, तो पेट भरने के बाद में वो जो लगन है जो तीव्रता है वो कम, पर वो कम नहीं होने देंगे। अगर देखा जाए तो नशा कम नहीं होना चाहिए, पर ये भी है कि एक ही नशा 10 साल तक नहीं टिक सकता कि भगवान मिला, ये नशा लंबा समय नहीं, इसके लिए नशे को समान में परिवर्तन कर देना, समान नशे का सूक्ष्म रूप है। बाबा ने आज बोला ना केवल नारा नहीं लगा, भगवान मिला भगवान मिला, मेरा बाबा मेरा बाबा के नारे नहीं लगा, उससे कुछ नहीं होगा, अनुभव में जाना है, अनुभव हो एक घड़ी का भी अनुभव बाबा नहीं बोला, कितना शक्तिशाली होता है जहाँ अनुभव है वहाँ, जितना अनुभवी उतना मास्टर सर्वशक्तिवान, जैसे एक बूंद शक्तिशाली बूंद अगर है तो बहुत कुछ कर सकती है, अगर कमजोर बूंद है तो वो इतना नहीं कर सकती बाबा ने, तो एक घड़ी का अनुभव अगर किसी को करा दो, किसी से कितना भी कोई हमसे लड़ने झगड़ने आया ये क्या ज्ञान है तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी का, उसको बस अनुभव करा दो शांत, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, अनुभव हो गया तो शांत हो जाएगा। जैसे शांति शांतामणि दादी के पिताजी थे ना, उनका नाम क्या था, रिंजुमल, वो जब गए पहली बार बाबा कश्मीर में थे तो वहाँ कश्मीर गए और एक निर्मल शांता दादी खड़ी थी, उससे पूछा कि पालगाम कहाँ है, बोले पालगाम पालगाम मुझे नहीं पता, परम धाम मुझे पता है, वहाँ जाना है क्या, उसको लगा शायद होगा कोई ऐसा ही कोई अच्छा पॉइंट होगा साइट सीइंग का, बोले हाँ ठीक है, बोले ठीक है वो कुटिया में बैठ जाओ, एक कुटिया थी तो अपने कुटिया में बैठने को बोला, फिर दादी गई, वो कुछ 19-20 साल की होगी कि एक भाई आया है सिंध हैदराबाद से आया है, ये तो कश्मीर था ना, तो ऐसे ऐसे बोला, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं परम धाम का रास्ता तुमको बता सकती हूँ तो आप उसको बता दो, तो बाबा गए 2-3 प्रश्न पूछे, हाँ याद कर रहा था, जबकि वो 3 दिन से ही वहाँ आया था, वो 3 दिन से उस जगह आया हुआ था, तो वो पूछता है कि उसको लगता है आश्चर्य कि जरूर ये कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होगा, किसको कैसे पता चला मैं 3 दिन से आया हूँ, फिर उसको इधर उधर की बातें की और फिर जैसे उसको पूछा कि वो उसने पूछा शायद परम धाम कहाँ है, तो बाबा इधर उधर देख रहे थे तब तक और फट से ऐसी दृष्टि दी उसको कि वो ऊपर मतलब परम धाम बिल्कुल उसको सारा हो गया, परम धाम उसको बाद में आए तो उसको सारे साक्षात्कार सब हो गया, उसने सब अपनी स्टेट जायदाद सब बाबा के हवाले कर दी, जब बाबा वापस आए तब सब कुछ दे दिया उसने सेकंड में, तो ये है अनुभव करा दिया ना आत्मा को, किसी आत्मा से हम कितना कोई अगर ज्ञान में झगड़ता है उसको नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसार वाले इतना कोटेशन देंगे, वो ये बोलेगा ये शास्त्र में ये लिखा है उसमें, हम बोलेंगे सृष्टि चक्र 5000 साल का है, कहाँ लिखा है ऐसे पूछेंगे, तो क्या बताओगे बाबा ने कहा, और क्या बता सकते ज्यादा नहीं बता सकते हम, तो ज्ञान में तो हमको हरा सकते हैं परंतु धारणाओं में नहीं हरा सकते, धारणाओं में कौन हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, वो इसको सुना है रामपाल, रामपाल जी रोहतक वाला, उसके भाषण है ब्रह्मा कुमारियों के विरोध में, इतने भयानक भाषण है, आर्य समाज ही नहीं है वो दूसरा पंथी,
अच्छा
रामपाल है रोहतक वाला, वो अभी भी है, तो वो किताब ऐसे बताते हैं, उसके वीडियो है 4-5 यूट्यूब पे, किताब अपनी जो है ना साप्ताहिक पाठ्यक्रम, हाँ तो वो बताता है, देखो ये एक नया भ्रमित करने वाला प्रंत निकला है, नाम है प्रजापिता, ऐसे पढ़ के बताता है पूरा, फिर एक एक प्रश्न बताता है, उसको पता तो कुछ नहीं है पर वो ऐसी उसके हजारों भक्त सामने बैठे उनके सामने किताब लेकर एक एक उसने स्टडी किया है पूरा उस किताब का, और वो बताता है देखो कैसे भ्रमित कर, देखो मन माना भाव ले लिया ये ब्रह्मा को बाकी का तो श्लोक आता नहीं पूरा, बस उतना उठा लिया इधर का कान लिया इधर का सर लिया, ऐसे पूरा बताता है, हाँ मतलब विरोध करता है, मतलब इतना, और वो भी ऐसे वैसे विरोध नहीं करता है, एक तो सन्यासी होते बिल्कुल उनको सुनना ही नहीं है, और उसने सुना उसने स्टडी किया और उसका विरोध करता है, तो ऐसी भी आत्माएं हैं संसार में आज भी है, और उसका 2000 उसने सबके बारे में विरोध करता है, आर्य समाजियों का भी विरोध करता है, इसके लिए आर्य समाजी और उसका झगड़ा हुआ। एक बहुत बड़ा 2006 में अटैक हुआ था जिसमें 2-3 लोग मर गए थे, उसके बाद में उसको सजा हुई 2 साल
इसको
ही रामपाल जी को। फिर वहां से उसका आश्रम सतलोक आश्रम था वो शिफ्ट हुआ दूसरे, अभी हिसार में है, वहां पे भी उसके हजारों लाखों भक्त है, बहुत भक्त है, भले वो बहुत सारे मर्डर के बहुत सारे आरोप उसके ऊपर है फिर भी भक्त उसको छोड़ते नहीं। और एक बहन का तो ऐसा अनुभव मैंने वीडियो है वो सुना, 10 मिनट वो बोल रही है, क्या बोल रही है, 14 साल तक मैं ब्रह्मा कुमारी में थी पर बहुत दुखी थी, मैंने दादियों से मिली, उनका वो शिव पिता है उससे भी मिली पर मुझे सुख शांति नहीं मिली कभी, पर जब मैं इनकी शरण में आई बाबा के तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। ऐसा सुनने को भी मिल सकता है, ऐसी भी आत्मा है संसार में।
News 24 चैनल में भी आए थे 4-5 महीने पहले, और वो आश्रम जला भी गया,
जला दिया, बहुत कुछ हुआ है बाबा इसका तो, इतना न्यूज पेपर में इतना आया है। हाँ आपको तो सब पता होगा, उनका 2 साल तो 18 महीना तो जेल में थे, और जेल से जब छूटे और गवर्नमेंट ने उनका आश्रम उनको वापस दिया तो वो वापस आर्य समाज ही आ गए, और बहुत सारा 3 लोग मर गए वापस, इतना झगड़ा हुआ।
अच्छा।
मतलब वो सबके विरोध में ही बोलता है। वो तो कबीर को ही भगवान मानता है, कबीर पंथी है। अच्छा। वो कहता है कबीर ही भगवान, उसका जैसे हमारा ये है ना सूक्ष्म वतन, ये उसका अपना गोल आकार का है, 1-1-1-3। तो बाबा कहते ना अनेक मते है संसार में, नाना मुनि अच्छा, नाना मुनि का नाना
बेटा
मिलने
किसी,
इसके लिए विरोध भी करेंगे, इसके लिए आत्माओं को कब तक ज्ञान सुना, अनुभव करा देना, अनुभव उसको करा दिया तो चुप,
सवालों का भी तो बहुत भक्का है।
हाँ
डायरेक्ट भगवान मानते
हैं, अनुभव हुआ है कुछ तो, इसलिए
संसार में तो हर भारत ऐसा देश है कि हर 10-100 किलोमीटर में
भगवान है,
एक व्यक्ति है जिसको भगवान माना जाता है। ये कौन है, ये उसका अवतार, और आगे जाओ ये कौन है, ये उसका अवतार, ऐसा है भारत, कितने सारे अवतार, कितने सारे भक्त, कितने महान आत्माएं है। महात्मा गांधी का भी एक मंदिर बनाया है कहीं,
जयंती लाइन जी गए थे अभी उदयपुर में एक
सम्मेलन था, हाँ रोटरी वालों का,
महाराष्ट्र में बहुत महान आत्मा है,
सभी जगह है। सब जगह भारत संतों की भूमि है, संतों की भूमि है, महान भूमि है। तो बाबा ने कहा एक तो मंत्र को भूल जाते हैं, मन मना वो मंत्र है, इस मंत्र को भूल जाते हैं, हम सो देवता इस मंत्र को भूल जाते हैं। और दूसरा कारण बताया,
जो युक्तियां बताते,
जो बाबा ने यंत्र बताए मायाजीत बनने की भिन्न भिन्न, वो समय पर कार्य में नहीं लगा,
जैसे ज्ञान गुण शक्ति उसको ये यंत्र
समय पर यूज करना,
प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यंत्र, और मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए,
एकाग्र करने या बुद्धि योग के लिए
मंत्र,
मंत्र ये बातें, तो इनको भूलते हैं, इसके वजह से अंतर पड़ता है। अगर ये करो प्रैक्टिकल में लगाओ तो ये अंतर समाप्त हो जाएगा बाबा ने कहा। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। फिर आगे उदाहरण दिया कहाँ का, इसका भी कारण बताया,
मंत्र क्यों भूल जाते,
मंत्र क्यों भूल जाते, अभी इसका कारण क्यों भूल जाते हो, तो समय प्रमाण, जैसा समय वैसी स्मृति, जैसा समय वैसा, जैसा कर्म वैसा स्मृति। फिर उदाहरण दिया सतयुग का, और यादगार है भक्ति में, दो उदाहरण, एक तो सतयुग का उदाहरण और यादगार भक्ति में। सतयुग का कौन सा उदाहरण,
वहाँ ड्रेस ना चेंज करते हैं,
ड्रेस और श्रृंगार, श्रृंगार कर्म के अनुसार चेंज होते रहते हैं। वो ब्रिजेंद्र दादी का अनुभव सुना, उसमें दिखा, बोला है दादी 3 बार, नहीं ब्रिजेंद्र दादी का अनुभव है, सतयुग के बारे में बहुत सारी बातें है उसमें, 100-100 मीटर का एक एक केला होगा,
100-100 मीटर का,
और नदियाँ जो होगी वो महलों के अंदर होगी,
100 मीटर केला तो बहुत बड़ा हो गया।
हाँ वो बोला है इसमें दादी ने, ऐसी ऐसी बातें बोली है उसमें, उसके बाद में घर, पेड़ केला ये सब और नदियाँ जो होगी ना बाहर नहीं होगी महलों के महलों के अंदर होगी।
केले का पेड़ होगा केला कितना होगा देख के चलेंगे।
केला पेड़ ऐसे कुछ बोला है
100 मीटर केले का
बड़ा बड़ा केला 100 मीटर ऐसे बोला उसने। फिर उसके बाद में बाबा ने बोला 3 बार स्नान करेंगे और जो ड्रेस जो है एक ही बार जो ड्रेस पहना वापस नहीं पहनेंगे लक्ष्मी नारायण।
तो कहाँ जाएंगे 3 ड्रेस में
10-10
150 साल में कितनी बदलेंगे।
एक बार एक ही ड्रेस पहने जाएंगे और हर जैसे आज की बोली बोला हर कर्म हर श्रृंगार का अपना अपना ड्रेस
होगा। तो पूरा दिन काम में दूसरा का धंधा नहीं पाएगा।
दूसरा काम क्या है काम क्या है वो बताओ। कोई ज्ञान योग करना है कोई पढ़ाई करनी है
बस कपड़े बदल दे रहा खाते पीते रहे
बस।
यहाँ भी अपने ज्ञान सरोवर में वही है तो सूरज भाई एक बार सुना रहे थे बोला उसको भी बड़ा पहनने का शौक था तो पहन के आता वो बोलते कोई भी चिढ़ाने के लिए क्या पहन लिए
तुरंत जाके चेंज
चेंज करता उसको इतना तंग करते थे इतना बना के रखा था कि वो चेंज करते ही रहना मतलब।
हमारे स्कूल में टीचर थे 365 दिन उनके शूज जो थे 365 एक भी दिन शूज मतलब जो है दोबारा नहीं
हम सबसे उन्होंने कॉपी किया है ना भाई।
तो ये उदाहरण किस लिए लिया बाबा ने जैसे वो अपना समय अनुसार तो यहाँ पर भी जैसा कर्म जैसा समय वैसा स्वरूप और इसी का यादगार फिर भक्ति में है। भक्ति में क्या यादगार है मंदिरों में जैसा दर्शन दर्शन के हिसाब से कपड़े बदले होते हैं। तो ये था समय जैसा समय वैसा हमको अपना स्वरूप बदल। फिर बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे फिर वहाँ बाबा ने और 6 बातें बताई 6 बातों का अपना अपना स्वरूप। एक तो अमृत वेला दूसरा स्टडी बॉडी स्टूडेंट तीसरा
कर्मयोग
तीसरा चौथा दृष्टि बनकर व्यवहार में 5वां अन्य रुको इधर बोलने को सकते बोलो
मैं सब इधर से इधर से बोले
बोलो बोलो हाँ और 5वां विकारी वाइब्रेशन विकारी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो कैसा स्वरूप और 5वां-6वां वाइब्रेशन वाली आत्माओं के साथ कैसा संपर्क कैसा हमारा स्मृति हो। तो सबसे पहला अमृत वेले के बारे में बाबा ने बताया बाकी तो 5 छोड़ दिया। अमृत वेले के बारे में कैसा स्वरूप हो हमारा कैसा ना हो मेजोरिटी क्या करते हैं शिकायत करते हैं उलाना देते हैं दिल शिकस्त होते हैं उलाना वरदान मांगते हैं या फिर दूसरों की शिकायत करते हैं पर होना कैसा चाहिए अब ये बताओ। नहीं नहीं आज का बताओ बाबा ने क्या बोला चिमन भाई कैसा होना चाहिए अमृत वेला स्वरूप ना हाँ बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति एक दूसरा स्थिति कैसी अनिल भाई विश्व कल्याणी मास्टर बीज रूप और सर्व अनुभवों के सर्व शक्तियों के अनुभवी सर्व अनुभव अनुभव सर्व शक्तियों के अनुभवी और वरदानी स्थिति मास्टर बीज रूप स्थिति विश्व कल्याणी स्थिति बाप समान बीज रूप स्थिति ऐसी स्थिति होने के बजाय
शिकायत
करते रहते उसी में समय
कितना बड़ा अंतर हो गया
अंतर हो गया ये तो प्रैक्टिकल बात है ना बाबा से शिकायत करते रहते हैं।
बोला ना
हमने
का एक सेकंड अच्छा पॉइंट बताते हो दूर से
और कैसी स्थिति होनी चाहिए अमृत के लिए और भी कोई वर्ड है उसमें सर्व शक्तियों की स्मृति स्वरूप सर्व अनुभव की स्मृति स्वरूप मास्टर बीज रूप बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति विश्व कल्याणी स्थिति ऐसी स्थिति समर्थ स्वरूप समर्थी स्वरूप की स्थिति ऐसी स्थिति होने के बजाय क्या करते हैं उलाना देते हैं शिकायत करते हैं दूसरों की शिकायत करते हैं। दादी ने बोला ना किसी की कंप्लेन करो ना कोई तुम्हारी कंप्लेन करे कंप्लेन करने वाले कभी कंप्लीट नहीं बनते
तो सबको कंप्लीट कर देगा।
और ये तो हो गया फिर उसके बाद में और एक उदाहरण है अभी ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हुआ और एक उदाहरण है, वो कौन सा?
हिम्मत वाला पॉइंट।
अरे हिम्मत बहुत आगे है, ये हमारा सेकंड पेज चालू है, हिम्मत थर्ड पेज पर है। बाबा ने कहा क्योंकि ये अनुभवी, क्योंकि ये ऐसा स्मृति स्वरूप नहीं है, इसके लिए अनुभव नहीं होता, इसके लिए खुशी नहीं होती है, ये भी आगे है। इसके लिए दूसरा एक उदाहरण दिया, जैसे नामी ग्रामी लोग होते हैं, जैसी स्टेज वैसा
स्वरूप होता है।
कोई उत्सव का मौसम, उत्सव है तो उसी अनुसार अपना स्वरूप बना देते हैं, चाहे वो बनावटी है, अल्पकाल का है, उनका है बनावटी, तुम्हारा है रियल। तो रॉयल्टी और रियलिटी के अभ्यासी बनो, बनावटी है उनका, अल्पकाल का है आर्टिफिशियल, फिर भी उनको मान मिलता है, उनका नाम होता है अल्पकाल का, नाम तो होता है ना उसका, महिमा उसकी गाई जाती है। जैसे लीडर होते हैं ना, इधर भी आते हैं तो व्हाइट ड्रेस पहन लेते हैं, बहुत होशियार होते हैं ना, पूरा शॉल भी कोई कोई ऐसे डाल देते हैं यहाँ से,
उसमें बहुत
जैसे ये लोग करते हैं वैसे हम भी करें, भले यहाँ से जाने के बाद कभी नहीं पहनेंगे, पर यहाँ आने के बाद व्हाइट पहनेंगे, शॉल ऐसे डालेंगे, जैसे मतलब जैसी परिस्थिति उस अनुसार, बाबा ने कहा जैसी स्टेज वैसा स्वरूप, तो जैसा समय वैसा स्वरूप, जैसा कर्म वैसा स्वरूप, जैसी स्टेज वैसा स्वरूप, तीन बातें निकली,
कर्म स्टेज,
नामी ग्रामी आत्माओं का उदाहरण और वो उधर का, पहले उदाहरण दिया ड्रेस का और भक्ति में फिर हमारा याद क्या है, तो सतयुग का उदाहरण और भक्ति में हमारा इसी का यादगार, इसी अभ्यास का यादगार चलते रहता है।
अच्छा मंदिरों में बोलते बड़ा बड़ा वो
नामी ग्रामी मंदिरों में,
नामी ग्रामी मंदिरों में भी वस्त्र परिवर्तन कर,
तो आगे फिर यहाँ पर और आगे क्या बोला बाबा ने, हाँ जो हूँ जैसा हूँ यही पे आता है ना, वो जिसका हूँ इस स्मृति स्वरूप, और फिर वो नामी ग्रामी वाली, वो जानी जानन हार वाली बात आ गई, जानी जानन हार तो बन गए, अगर कोई विस्मृति का कोई कर्म करता है तो उसको भी समझा, वो कहता है
हम
कहते हैं, वो कहेंगे हम आपसे भी ज्यादा जानते हैं, ज्ञानियों को ज्ञान थोड़ी समझाया जा सकता है, समझा सकते हैं ज्ञानियों, अज्ञानियों को बहुत जोश से समझा सकते हैं, ज्ञानियों कोई गलती करे तो, जो हमारे बाजू में बैठा था मुरली सुनते समय, बाबा ने कहा था बहुत मीठा बोलो, वही दोपहर को एकदम कड़वा बोलता है, उसको बोल सकते हैं बाबा ने मीठा बोलो बोलने के लिए कहा है, ज्ञानियों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उनके प्रति शुभ भावना, शुभ का वो टाइम पे नहीं, वो तो और भड़क
चाहिए, व्हाट्सएप पे आया था ना, खोलते हुए पानी में जो है सकन दिखाई नहीं देती,
वहाँ कुछ नहीं, वहाँ मौन ही अस्त्र है, मौन ही अस्त्र है, मौन चुप रहो बस। फिर आगे बाबा ने प्यार की बात कही है, पूछा कि बाबा से प्यार है, अगर प्यार है तो याद कैसी होगी, स्वतः, जैसे तुम्हारा व्यक्ति वैभव से प्यार है, जैसे तुम्हारा देह से प्यार है, तो देहवान में कितना सहज आ जाते हैं, और प्यारे से प्यारी वस्तु, प्यारी वस्तु कौन सी है,
बाप, उससे प्यारा कुछ होता नहीं,
उससे प्यारा कुछ होता नहीं, भूल जाता, इसके लिए याद निरंतर सही रहे,
बोला टू मच झंझरों में चले जाते,
साकार मुरली में बोला ना बाबा ने कि टू मच झंझटों में नहीं जाना, अगर इतनी ताकत है कि खुद अपना शरीर निर्वाह कर सकते हो तो झंझटों में नहीं
जाने की जरूरत,
झंझटों में जाने की जरूरत नहीं है,
टू मच झंझट में जाओ,
किसी में भी टू मच कहीं भी जाओगे ना, अति सर्वत्र वर्जते, जहाँ अति में चले जाओगे वहाँ पर नाश है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है वो उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, हमको लौकिक नाम मान शान चाहिए, अगर वो चाहिए तो यहाँ इस जंगल में क्यों आ गए थे, संसार छोड़कर, ये जंगल ही है जब आए थे तब तो जंगल ही था, संसार में कितनी क्या क्या है, चमक दमक, वो सब छोड़ के यहाँ किस लिए आए थे, क्या यहाँ नाम मान शान के लिए आए थे, यहाँ कुछ और पाने के लिए आए थे, या तपस्या करने आए थे, जीवन का लक्ष्य केवल तपस्या करना है और कुछ नहीं, क्या सेवा हमारा लक्ष्य है, सेवा है, परंतु जो बाबा ने उदाहरण देते ना, नदी और तालाब, एक मुरली में बाबा ने पूछा नदी हो या तालाब हो, तालाब क्या करता है, सेवा करता है, पर सेवा ही करते रहता है वो, लोगों को पानी देता है ना खाली, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, पर नदी का सेवा करते करते उसका लक्ष्य है उसको संपूर्ण सागर में मिलना है, उसका जीवन का लक्ष्य है सागर में मिलना, उसकी सेवा करना ये उसका मेन लक्ष्य नहीं है। वो तो दे रही है जहाँ जहाँ से जा रही है वो सेवा करते जा रही है, पर उसका लक्ष्य है समुन्दर से मिलना। तो रिवाइज करो अपने आप को, देखो मैं यहाँ क्यों आया, ये प्रश्न उठते ही पूछो। क्या गप्पे ग्रुप, दादी कहती है ना गप्पे ग्रुप बताएगी वो अनुभव सुनो, जयंती बहन का अनुभव लिखा हुआ है, दादी ने उसको दो तीन बातें बताई थी जो उसके जीवन के लिए वरदान बन गई। उसमें एक दादी ने बात बताई है गप्पे ग्रुप से दूर रहना है, जिसको दादी सुनहरी टोली कहती है, बाबा ने उसको सुनहरी टोली नाम से
गप्पियों
नहीं गप्पे ग्रुप मतलब जो ऐसा ग्रुप जो बैठकर व्यर्थ चिंतन करता है, निगेटिव चिंतन करता है,
क्या
हाँ ऐसे ग्रुप में नहीं रहना है कि जो तीन चार लोग बैठते हैं यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसने क्या किया इसने क्या किया संसार नहीं ब्राह्मण संसार समाचार बाहर का नहीं इधर का ब्राह्मण संसार समाचार ये भाई ये डिपार्टमेंट में था यहाँ से वो डिपार्टमेंट गया तुमको पता है तो बोलेगा नहीं पता कैसे गया क्यों गया क्या क्या हुआ उधर
कब गया
हमको तो पता ही नहीं।
हमसे कई बार पूछते हैं ना जैसे गेट पे
जैसे कोई नीचे से आ जाता है एक दिन के लिए आता है नीचे से और सारी पांडव भवन की इन्फॉर्मेशन निकाल के शाम तक चला जाता है और बाद में बोलते हैं तुमको पता ही नहीं बुद्धू हो तुम तो एकदम बुद्धू कौन है संगम युग में सबसे अधिक होशियार कौन है बुद्धिमान जो व्यर्थ से मुक्त है वही सबसे अधिक बुद्धिमान जिसको पता ही नहीं कहाँ क्या चल रहा है क्या करना है कुछ फायदा। इसको दादी ने गप्पे ग्रुप कहा है और एक सुनहरी टोली नाम दी है बाबा ने इनको इस ग्रुप को 1940s कराची में जब 12 साल थे तो एक बहन का पार्ट चला था एक साल के लिए कल हमारे हॉस्पिटल में क्लास था जयंती बहन का बता रही थी एक बहन का पार्ट चला था एक साल के लिए बस कि बाबा उसके तन में आने लगे। जानकी दादी ने जयंती बहन को बनाया जयंती बहन ने हमको सुनाया कि यज्ञ में भोग का सिस्टम कैसे चालू हुआ इसकी इसका बहुत बड़ा इतिहास है।
एक साल बाबा उसके तन में
एक बहन के तन में
शिव बाबा
कराची में 12 साल जब थे तब की बात है। हाँ वो इस बात को बताने के लिए कि ऑथोरिटी कि किसी दूसरे के तन में बाबा ये बता रहा है कि ये ब्रह्मा है इस बात को और ज्यादा सिद्ध करने के लिए। तो जिस तन में बाबा आने लगे उस बहन को ये अभिमान होगा कि मेरे तन में भगवान आता है और वो फिर बाबा ने ऐसे पांच वो ऐसे पांच का ग्रुप था उनका एक वो पांचों के पांच ही निकल गए यज्ञ से। उनको बाबा ने कहा था सुनहरी टोली जो व्यर्थ में हो गए चले गए निगेटिव जिन में आ गया या अभिमान आ गया। फिर उसका बहुत बहुत सारा सुनाया उस दिन 15 मिनट तो इसका ही बताया कि कैसे भोग धीरे धीरे चालू हुआ। पहले भोग कहाँ लगा देते बाबा को फिर वो धीरे 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 बहुत सारा बातें
बताओ।
तो
जो बाहर से सहयोग आते थे उसी समय भोग
यहाँ से उसमें ऐसा है कि जो बाहर से आया सहयोग अभी उसमें क्या है वो हमने बाबा को दे दिया फिर बाबा के थ्रू हम खा रहे हैं तो उसका जो विकर्म का जो प्रभाव है वो हम पर नहीं होगा। ये उसका सूक्ष्म फिलोसॉफी है भोग के पीछे की और कोई दूसरी कोई खास बात
अर्पित करके
अर्पित कर दिया फिर वो जो भोजन बना वो भी बाबा को अर्पित कर दिया जैसे भोग लगाया और फिर वो हम खा रहे हैं। नहीं तो किसी ने पता नहीं हमको क्या पता कौन कहाँ कैसे कमा रहा है भले वो भक्ति में भी ना बहुत अच्छा दो नंबर की कमाई और मंदिर में चढ़ा देते कौन कैसे कमा रहा है हमको पता नहीं। तो अर्पण करना बहुत आवश्यक है इसके लिए वो सिस्टम धीरे धीरे वहाँ से निकला से।
इसलिए बिना याद के खाए तो कितना
चोरी बोला है गीता में
चोर है
तो चलो आगे। फिर बाबा ने कहा प्यार के बारे में बात कर रही थी कि तुम्हारा बाप से बाबा ने आज तो सर्टिफिकेट दे दिया प्यार कम है तुम लोगों का कम है तुम लोगों का हमेशा बोलता है प्यार में सब नंबर वन है पास है आज बोला नहीं
अटके हुए बोला
अटके तुम्हारा कहीं ना कहीं प्यार अटका हुआ है कहीं ना कहीं प्यार अटका हुआ है इसके लिए तो यहाँ कम है। इसके लिए फिर वहां पर अनुभव की बात बताई अनुभव के लिए उदाहरण दिया एक बूंद का अगर शक्तिशाली बूंद है तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर कमजोर है तो इतना नहीं हो सकता। तो किसी को एक घड़ी भी अनुभव अगर कर दो, करा दो, तो शक्ति आ जाएगी बाबा ने, शक्ति आ जाएगी एक घड़ी भी अनुभव। तो सारे दिन भर क्या होगा प्रश्न पूछा ना, तो शक्ति आ जाएगी उसका उत्तर था। फिर ये अनुभव नहीं है इसके लिए खुशी नहीं है, फिर बाबा से पूछते रहते खुशी क्यों नहीं है।
इसने फिर एक और मिसाल दिया,
हाँ
वो डोज वाला,
वही तो बताया ना, एक बूंद, वही 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 तो है ना एक बूंद। तो ये बात बताए। फिर उसके बाद में बाबा ने कहा जैसे बाबा समर्थ है वैसे तुम बच्चे भी समर्थ हो, बाबा कभी समर्थ कभी कमजोर नहीं है, बाबा तुम समर्थ ही देने वाला है तो तुम लेने वाले हो या देने वाले हो, बाप ने आते ही अधिकार दे दिया है तुमको तो तुम समर्थ ही स्वरूप हो। जिसमें ज्ञान नहीं है वो कभी मांगते नहीं है, वो कभी मांगते नहीं है शक्ति दो मदद दो, जिनमें ज्ञान नहीं है वो मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा तो मदद का रास्ता है कौन सा, मदद का रास्ता है हिम्मत। अभी हिम्मत से क्या क्या होता है बताओ, पांच सात आठ बातें हिम्मत के बारे में। एक तो ब्राह्मण जीवन का मर्जीवा जन्म का श्वास है, अगर श्वास छोड़ा तो जीवन नहीं है। और एक तो ये
प्रॉपर्टी,
हिम्मत छोड़ी तो प्रॉपर्टी छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी तो बाप को छोड़ा, श्वास को छोड़ा, वो भी एक जगह बोला है उसके आगे। और हिम्मत से क्या क्या होगा बोलो राजकुमार भाई,
चिमन भाई
बोला मदद
एक का लाख गुना। हाँ ये बोला देखा, ये पावरफुल है सारे पॉइंट क्या है, एक का लाख गुना। और हिम्मत से मुश्किल सहज, हिम्मत से असंभव संभव, हिम्मत से साइंस की भी वृद्धि, दिन को रात, रात को दिन और चांद तक चले गए। हिम्मत से हो रहा है ना ये सारा, हिम्मत चाहिए, जहाँ पर भी हिम्मत रखोगे हिम्मत से सब कुछ होता
है। हिम्मत का एक कदम रखोगे तो मदद।
ऐसे ही बाबा से प्रार्थना करते रहेंगे, ये प्रार्थना और पश्चाताप का भी पॉइंट हम भूल गए, ये प्राप्ति का समय है अभी, वो तो प्रार्थना और पश्चाताप उधर करते रहते हैं भक्ति में।
अभी प्राप्ति का समय, प्राप्ति का आधार है जैसा समय वैसा,
जैसा समय वही है वही, ये हो गया हो गया, वो पहले का हम भूल गए
भूल गए।
तो ये भी एक बाबा ने अभी दो तीन दिन पहले मुरली में था, ज्ञान एक सेकंड का है, मुक्ति एक सेकंड की, विनाश एक सेकंड का है और ज्ञान एक सेकंड का है। कितनी पॉइंट है आज की मुरली, पॉइंट कितनी है सेकंड का है, पॉइंट अभी पूरी हुई नहीं है, अभी चालू ही है, बाहर निकल ही रहा है बाहर, वो भी हमको रिवाइज करना है, इसको खत्म करते। फिर बोला ये हो गया यहाँ पूरा, फिर ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोला ना, तो मानते हैं बोलते हैं, तो अभी वो भी दिखाना है लोगों को, अनुभव दिखाना है। फिर भगवान मिला, भगवान मिला केवल नारे नहीं लगाने, अगर भगवान मिला और सब कुछ छोड़ दिया तो फिर वापस उधर बुद्धि क्यों जाती है, और चाहिए क्या। फिर महारथियों को इशारा दिए कि महारथियों का क्या करना है, वायुमंडल को बदलना है, पावरफुल बनाना है, जो जिन आत्माओं का अकल्याण हो गया है उनका कल्याण, न अकल्याण नहीं होने का प्लान बनाना है, युक्ति रचनी
है। पार्टी में भी मिला चार पेज,
हाँ पार्टी नहीं मिला फिर भी चार पेज। फिर एक पॉइंट हम और छूट गया, स्पीड के बारे में, पुरुषार्थ की स्पीड, जो अनुभवी है तो ही पुरुष, अनुभव है तो पुरुषार्थ की स्पीड, अनुभव नहीं कम तो पुरुषार्थ की स्पीड। तो पुरुषार्थ में अनुभव का लक्ष्य रखना है। बाबा ने जो पांचों बातें बताई, अमृत वेले भी अनुभव हो, मुरली सुनते समय भी अनुभव हो, कर्म करते समय भी कर्मयोगी का अनुभव, दृष्टिपन का अनुभव, विकारी आत्माओं के संबंध संपर्क में भी वहां पर कौन सी स्मृति में रहे, ताकि विकारी आत्माओं के वाइब्रेशन हमको टच ना करे,
हमारे उनको टच,
हमारे उनसे हम प्रभावित ना हो,
हमारे
नहीं तो उनके भी बहुत पावरफुल संकल्प होते हैं, वो तो प्रभावित हो जाते हैं। हम अगर कमजोर है तो प्रभावित हो जाते
और सबसे नई क्वालिटी अनुभवी मैडम मास्टर सर्वशक्ति
जहाँ अनुभव जितना अनुभवी उतना मास्टर सर्वशक्ति फिर और क्या बोला महारथियों को ये तो कल्याण वाली बात है वहाँ पर वातावरण को कैसे वातावरण संकल्प बोल कर्म हाँ अपने प्रति शक्तियाँ नहीं लगानी है ये भी टाइम नहीं है फिर इंडिविजुअल नहीं विश्व महाराजन अर्थात विश्व कल्याण कर रही सारा वही
स्मृति अगर है
तो ही विश्व
विश्व कल्याण कर सभी विश्व महाराजन बन सकते हैं
इंडिविजुअल नहीं
इंडिविजुअल है तो फिर राज्य के राजा
विश्व
विश्व महाराजन
नहीं बनेंगे
कल्याणकारी
तो आज की मुरली पूरा वक्त तो स्मृति स्वरूप पर है फिर प्यार के बारे में फिर अनुभव के बारे में हिम्मत के बारे में और वायुमंडल को परिवर्तन करने के बारे में वो स्मृति स्वरूप में पांच छह बातें टोटल स्मृति स्वरूप बहुत अच्छा शब्द है
सर्व प्राप्ति का आधार
एक हफ्ते में क्या बोला अभी वो बता दो थोड़ा
शिव जयंती धूमधाम से मना रहे
सच्ची दिवाली है
यही दिवाली है
उनका बायोग्राफी अच्छी तरह से
शिव के मंदिर में जाओ शिव की बायोग्राफी सुनाओ रामचंद्र के मंदिर में जाओ राम की बायोग्राफी सुनाओ कृष्ण के मंदिर में जाओ कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी अगर बाप की बायोग्राफी सुन के वो चकित हो जाते चकित हो जाते लोग वंडर खाते ऐसा कहाँ से ये कहाँ से लाया तुमने भगवान की बायोग्राफी बाकी सारी जयंती गौड़ी तुल्य तो बर्थडे मनाना है क्या अपना बर्थडे मनाने का बड़ा फैशन है मनाना है बर्थडे बाबा ने कहा सब की गौड़ी तुल्य एक कृष्ण है वो उसकी ठीक है उसकी भी थोड़ी हीरे तुल्य क्योंकि उसको इस ऐसा उसको ऐसा इसने बनाया ऐसा है उसने उसको ऐसा इसने बनाया इसके लिए उसकी भी जयंती थोड़ी हीरे तुल्य बाकी सब और बोलो देवी बनाएंगे जो देह अभिमानी है वही देवता बनेंगे बाकी जो देह अभिमानी है वो कंगाल बनेंगे बाबा ने एक मुरली
विकारी ख्याल उड़ जाएंगे
देह को देखेंगे तो विकारी ख्याल आएंगे एक मुरली में ये भी बोला है
इसमें भी है ना
देही अभिमानी बनेगा
वो पूरा मुरली एक पूरा पवित्रता पर मुरली है वो पूरा कंप्लीट
हम भी आत्मा तुम
भी आत्मा
बाबा भाई बहन की दृष्टि में भी
ममत निकल जाएगा बाबा ने कहा
तुम हो धरती के सितारे वो है
चांद सारे तारे
तुम हो धरती के सितारे वो है आकाश के सितारे वो है प्रकृति की सत्ता तुम है परमात्मा सत्ता वो सितारे दिन को रात नहीं बनाते तुम वो सितारे हो जो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ रात रात को दिन बनाते हैं वो सितारे रात को प्रकट होते हो तुम ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य है जैसे कोई वीआईपी का बेटा होता है तो उसको भी नशा होता है तो यहाँ सबसे सबसे बड़ा कौन है बाप से बड़ा कोई है कोई नहीं है तो इसके लिए हम बड़े से बड़े बाप की ऊंचे हम ऊंचा बाप और ऊंचा काम इस नशे में रहो अधिकार तो शक्तियाँ मिलेगी वो और
जिसको ऊंची मंजिल प्राप्त करनी है तो वह देर से प्यार नहीं कर सकता
पुरुषार्थ समय की रफ्तार
पुरुषार्थ
तीव्र है और सुख चाहेगी क्या सुख चाहेगी
सुख मांगना आएगा ही नहीं
जो बाद में आने वाली है उनको सुख मांगना आएगा ही नहीं और
सेवा का टाइम से लेना और साथ
दुआओं के तीन स्लोगन है तीन तीनों बोल दो तीन स्लोगन दुआएं दो दुआएं लो तो भाई जी क्या बोलो दुआएं दो दुआएं लो तो सहज नहीं जल्दी से जल्दी कितना जल्दी कितना जल्दी वो बताया नहीं वहाँ पर दुआएं दो दुआएं लो तो जल्दी से जल्दी मायाजीत बन जाएंगे दूसरा एक दुआओं का था सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो दुआएं पुरुषार्थ में ऐड हो जाएगी और सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से जोड़ी भरना ये तीन दुआओं के वरदान थे और बोलो एक हफ्ते का निखिलेश भाई हंस और बगुले
हाँ, उसमें बहुत सारी बातें थी, दो दो शब्दों की, पतित पावन हंस बगुले दोन पानी,
वो भी बहुत अच्छी मूर्ति थी। बाबा ने उसको भी आनंदमय माँ को याद किया था,
आनंदमय माँ,
माँ माँ पर माँ से वर्षा नहीं मिलेगा, वो भी बहुत बड़ी भक्ति थी,
आनंदमय
कलकत्ता वाली आनंदमय माँ, एकदम मगन अवस्था में रहती थी, एकदम रैप्चर भाव समाधि में, अभी अभी है, अभी अभी गई, अभी अभी है, अभी अभी, जैसे देहभान में है ही नहीं,
अभी में गया ना एक
वो दूसरा, ये आनंदमय माँ की बात है।
कौन
आनंदमय माँ का तो बहुत अच्छा, मतलब शी वाज गुड।
जलंधर में का जो है
पर बाबा ने कहा चंडी का देवी को भी याद किया था बाबा,
चंडी का देवी को भी याद,
उसने भी थोड़ी बहुत तो श्रीमद को फॉलो नहीं किया पर भारत की थोड़ी बहुत सेवा की, तो वो भी विश्व का मालिक तो बन ही जाएगी, पर पद इतना नहीं मिलेगा।
मैं भी तो भारत का मालिक हूँ।
हाँ भील 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 का उदाहरण, और नया तो इतना है मुरली में कि पूछो मत, सब नया ही नया है, हर मुरली नहीं है, अथाह ज्ञान है उसमें, अथाह निकालना है बस उसको, दे दिया तुम्हारे सामने, उसको निकालो कितना निकाल सकते हो, इतना नई बातें है उसमें, और जिसके लिए जो निकाल नहीं रहा है उसके लिए रोज का एक ही है, क्या था वही तो था।
बहुत अच्छा था
यार,
शंकराचार्य का है ना, शंकराचार्य 8 साल की उम्र में था, शंकराचार्य 8 साल की उम्र में था, गुरु को ढूंढने गया, फिर गुरु के पास पहुंचा तो गुरु तो कितने सालों से समाधि में मगन थे, लोगों ने कहा कि ये सवानी तो कितने सालों से चालू है इनकी, ये टूटने वाली नहीं, पर किसी ने शंकराचार्य को कहा था कि यही तुम्हारा गुरु है, वो जाके 3 दिन तक बैठ गया उसके सामने, वो समाधि में मग्न, गुरु जी ने आँख खोला, बोला शंकर तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसके सर पे हाथ रखा और अष्ट सिद्धियां उसको दे दी, अष्ट सिद्धियां मतलब एक एक सिद्धि कैसी है, अहिमा गहिमा, एकदम छोटा हो जाना, एकदम बड़ा हो जाना, एकदम भारी हो जाना, एकदम हल्का हो जाना, आकाश गमन करना, परकाया प्रवेश करना, एक एक सिद्धि है ये, ऐसी 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असप्रदीम जानकी माता, जानकी को जब हनुमान ने अंगूठी दी तो उसको भी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दे दी, तो ये तो महान सिद्धि है शिवशंकराचार्य को दी है। और
एक स्लोगन है जो ड्रामा में सब कुछ अच्छा ही होना है,
इस स्मृति से बेफिक्र
बादशाह,
और एक था कि संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव,
सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो,
मुक्त बनो,
संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगाव को चेक करो और मुक्त बनो, और
आज आज का तो हो
गया, याद रखना है ये फर्स्ट स्टेप है, स्मृति स्वरूप है तो समर्पित स्वरूप, अगर बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है ना तो हम समर्पित स्वरूप नहीं है, बहुत सारे हमारे बुद्धि में पॉइंट्स रहने चाहिए, बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी
समय पर,
वो तो अपने आप याद आएगी, फिर समय पर अगर
नहीं
होगी तो अपने आप आएगी, नहीं तो याद नहीं आती है, वो समय पर भूल जाती है, निरंतर ज्ञान का मंथन चलता रहे, जैसे गाय बैठ के रात भर चालू रहता है, उगारती रहती है गाय, जो गाय उगारती नहीं उसको बाप कहते हैं बीमार है, जिसको बीमार समझा जाता है, यहाँ पर भी जो बच्चे ज्ञान का विचार अगर मंथन नहीं करते वो गोया बीमार है, साकार मुरली है बाबा की,
इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा,
सब में मजा है, सुनाने वाला तो एक ही है ना, दो है क्या,
अरे तीन तीन है।
और कोई अच्छी पॉइंट
क्यों नहीं याद आती बाप की, क्या मुसीबत,
अरे ऐसा नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है वो, ऐसा है रुको वो है
पता नहीं
क्यों नहीं वो
क्या मुश्किल है,
मुश्किल में ऐसा बोला है बाबा ने,
क्या मुसीबत
फिर पता नहीं क्या मुसीबत है, कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है, कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है, पता नहीं बच्चे क्यों, इतना मीठा बाबा कल्प के बाद मिला है, फिर पता नहीं क्यों भूल जाते हो ऐसे बाप को, इतना अच्छा इनोसेंट प्रश्न है बाबा का, पता नहीं क्या मुसीबत है, कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट? ये बड़ा अच्छा प्रश्न था बाबा।
बहुत सुनता है
और बोलो अरे वो आशुक माशुक का यहाँ था कि वो आशुक चेहरा देखता है, विकार के लिए नहीं।
आ,
वो
अच्छा
माशुक जो होता है ना, चेहरे पे माशुक होता है, पर विकार की बात नहीं है उसमें। ये वाला पॉइंट
तुम्हारी याद होनी चाहिए।
और
बाबा जैसे
वही वो तो बोल दिया, वो पूरी मुरली उसी में है, मर जीवा मरा हुआ न्यारा अनासा वो सब वो बहुत अच्छी मुरली उसी में आनंद में
मारा।
अर्थात दुआओं का झली
करना नहीं, उसमें मंजिल पर ले जाने की बात
सबसे
पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है जैसे सतगुरु पढ़ा रहा है, मतलब टीचर नहीं लग रहा, सतगुरु तैयार कर रहा है और ले जाएगा।
होती
तो हमने कुछ बोला नहीं, एक भी पॉइंट
तो एकदम
मुख से हमारे ज्ञान निकलता रहना चाहिए। इससे क्या होता है पता है, इससे संस्कार बनते हैं हमारे अंदर, न चाहते हुए भी संस्कार अंदर बनते हैं ज्ञान के। लास्ट संडे की मुरली क्या थी, जैसे तुमने अवगुणों को कूट कूट कर भरा है अंदर, अभी ज्ञान को कूट कूट कर गुणों को कूट कूट कर भरो। जैसे अवगुण को संस्कार बना दिया, क्रोध को संस्कार बना दिया, अभी गुणों को अपना संस्कार बनाओ। रावण की प्रॉपर्टी को अपना बना, रावण के माल को अपना बना, जायदाद को बाप के जायदाद, अभी बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को अपना बना दिया संभाल के रखते, अभी बाप की चीज को संभाल के रखो।
बोले रावण में तेरी हड्डियां तोड़ देगी, तेरी राख बना देगी।
नहीं ऐसे बड़े नफे से बोला था, ऐसे कर ऐसे करके हम तो श्रीमंत करते हैं ना कई बार।
और
जमा करना है
आज का। हाँ तो अब ये चिंतन का विषय, मर्यादा पूर्वक सुख देना,
मर्यादा
चिंतन करना है कि मर्यादा पूर्वक सुख न देने के उदाहरण बताओ। अभी इसके उदाहरण बताओ, मर्यादा छोड़कर सुख देने के उदाहरण बताओ, मर्यादा छोड़कर किसी को सुख देने, इसके 10-12 उदाहरण। वो नहीं, वो नहीं,
मर्यादा छोड़ के,
मर्यादा छोड़ के जैसे इसमें खाने पीने की बात आती है,
चीज देते हैं या कोई कपड़ा देते हैं किसी को, मर्यादा पूर्वक नहीं
है। फैमिली नहीं, सुख देने की बात है। जैसे कोई हमारा दोस्त मिल गया, पुराना ज्ञान काल का आ गया, या हम वहाँ चले गए और वो बोलते हैं चलो हम कैसे पहले जाते थे ना, पार्टियां करते थे, खान होटल में जाके खाना खाएंगे। हमको लग रहा है अभी इसका दिल कैसे तोड़े, हम तो इधर है। तो ये हो गया मर्यादा तोड़कर सुख देने के लिए ये करेंगे, तो ये नहीं करना है। एक इसमें खाने पीने की सारी बातें आ जाएगी, चाहे वो सिनेमा की बातें हैं, खाने पीने की बातें हैं और पहनने की बातें हैं, ये सारी आ जाएगी। किसी दूसरा जिससे सुखी हो, हम समझ रहे कि भाई ये करेंगे तो वो सुखी हो जाएगा,
उसकी हाँ में हाँ करना।
हाँ मतलब, पर ये मर्यादा छोड़ के हम ये भूल गए उस समय कि हम संगम युग। अब वही सिनेमा हो गया, बायोस्कोप हो गया, कुछ भी इस तरह का
खाने पीने।
हाँ अब एक तो ये हो गया, अभी दूसरा बीके के साथ वो बताओ, मर्यादा तोड़ कर किसी को सुख देना, इसके उदाहरण।
मर्यादा आके कोई बड़ा है और वो बातें ऐसी कर रहा है जो मतलब व्यर्थ है, निगेटिव है पूरा टोटली, लेकिन वो इस तरह से कि उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, बहुत नाराज होता है वो फिर, और कुछ न कुछ पीछे से वो कुछ न कुछ खराब बात करेगा।
तो नहीं, हम उसको सुख कैसे दे रहे हैं इस बात में,
मैंने हाँ में हाँ करके दे रहे हैं, वो खुश हो रहा है, हम सुन रहे हैं।
जैसे अपनी दिनचर्या तोड़कर हम,
हाँ ये एक पॉइंट, अपनी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या इस तरह से बनी हुई है, अभी उसी बीच में कोई आ गया तो हम उसको बोल भी सकते हैं कि भाई ये हमारी दिनचर्या ऐसी है।
अगर
हम उसको तोड़ के, हमारा दोपहर का शायद एक घंटा अभी सोने का समय है, वो कोई आ गया व्यर्थ की बातें करने, हम उसमें लगे, हमारी दोपहर में नींद नहीं हुई, रात शाम का योग या दूसरे दिन अमृत वेला नींद, मतलब पूरा प्रभावित हो गया ना, हमने श्रीमत तोड़ी और उसको सुख देने के लिए खाली, तो पूरा ही हमारा गड़बड़ हो गया। या एक आ गया हमारे पास, हमको पता है ये आया मतलब ये व्यर्थ की बातें करेगा एक घंटा। श्रीमत बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, हर चीज, हर चीज के लिए बाबा ने श्रीमत दिए, पर उस टाइम पे मर्ज हो जाती है, भूल जाते हैं हम थोड़े समय के लिए, पता नहीं चलता ये क्या। जैसे सेंटर पर कोई एक बहन रहती है, भाई बहने तो जो भी देते हैं भंडारी, वो वहाँ की भंडारी लेके अपने लौकिक घर में भेजती है कभी, क्या कहें इसको, ये भी सुख देने के लिए। उसको घर से फोन आता है कि भाई हमारे घर में पैसे नहीं है, तो बोलती है कि ठीक है यहाँ से भेज देती हूँ, ये भी सेवा ऐसे समझ। श्रीमत का उल्लंघन करके किसी को सुख देना, वो वही उसका उदाहरण है। और काम विकार की भी बात आ सकती है इसमें, काम विकार की सूक्ष्म बातें इसमें। कोई बहन कहे मुझे यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, यहाँ मेरे साथ चलो, वहाँ मेरे साथ चलो, कोई कहती है मेरे को मार्केट में ये खरीदना है, चलो आप मेरे साथ, एक बार चलेंगे ठीक है, एक बार चलने के बाद में 10 बार लेके जाएगी, ये क्या है। हाँ योग के समय, हाँ ये है, कोई बराबर 6:30 बजे आता है बोलता है चलो मुझे मार्केट जाना है, हम ये करेंगे, जो इंटरनेशनल योग है बोलते है चलो भेल बनाएंगे। सवा नहीं टाइम हुआ है 6:20, 6:20 में कोई बोलता है चलो अब भेल खाते, तो भेल खाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6:40 तो हो ही जाएगा। हमारा इंटरनेशनल योग 6:30 बजे चालू हो रहा है, हमने श्रीमत तोड़ी उसके लिए,
10 मिनट गए
विश्व को सकाश कम मिली ना। हम आधार है विश्व के, समय के स्थिति के आधार है हम,
इसमें आदत है काम करते हैं वैसे।
इसके लिए आदत ही ऐसी डालो कि दूसरे भी हमको हिम्मत ना हो किसी की हमारे पास टच करने की, कुछ बगैर से बातें पूछने की, बोलने की, सुनाने की। नहीं तो सुनाने वाले भी किसके पास आते हैं, उन्हीं के पास आते हैं जो सुनते हैं।
और एक बार आदत डाल दी है तो फिर
हमने एक बार सुन लिया तो दूसरी बार वापस आएगा। दूसरा और एक उदाहरण, कोई हमारे कमरे में आ गया रहने के लिए, हमारी आदत है 10 बजे सो जाए, 10:30 तक मैक्सिमम वो बातें चालू कर रहे हैं, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, ये हुआ, कोई शांतिवन से आ गया, कोई ज्ञान सरोवर से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, यज्ञ का या सेंटर का कोई भाई आ गया, चालू सेंटर की बातें सुनाना। हमने भी उसका
कंप्लेंट सुनते रहे,
हमने उसको बोला लगेगा हम नहीं सुनेंगे तो। हम सोए 11:30 बजे, हमारा जो नियम था सामने का टूटा,
यही तो वीकनेस है ना, यही तो मतलब साथ ना दे ना।
पर वहाँ पे थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, फिर
होता है ना,
वो दुखी हो जाता है। तो यही वाली बात है ना, श्रीमत तोड़कर सुख देना, जहाँ ये होगा वहाँ समझ लेना पश्चाताप करना पड़ेगा। हाँ मतलब लोगों को डर लगना चाहिए कि भाई हम इनकी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते, हम अपने आप को ऐसा बना के समर्थ बने, क्योंकि हम अगर थोड़े हाना हाना में है ना, जैसे आज की मुरली में है ना, कल के था ना सफलता, पता नहीं होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, ये अगर ऐसी स्थिति है तो यह असफलता का अंश है बाबा ने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए हमारे इसमें।
एक बार मना करना पड़ेगा,
एक किताब है इंग्लिश में, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, एक किताब है इतनी मोटी, जब तुमको ना करना है तब यस नहीं करो किसी को, केवल उसको सुखी सुख के लिए।
एक बार अगर रूट भी जाता है ना,
रूटने दो, घर वाले रूटते नहीं क्या, तो तुम्हारे दोस्त लोग नहीं रूठे जब ज्ञान में आए थे, तो माँ के हाथ का खाना छोड़ दिया था कितनों ने, तो माँ रूठी नहीं थी क्या, सब रूठते हैं, रूठने दो,
फिर बाद में सब एडजस्ट हो गए,
पर एडजस्ट हो जाते बाद में सब।
अच्छा माना,
हाँ फिर सब झुकेंगे चरणों में,
और आप झुक गए।
तो मेरे घर में वही हाल हुआ, बड़ा लड़का जब ज्ञान में आया, घर में आया खाया नहीं, कभी भी कोई उठा नहीं, कोई बात से पूछा नहीं, उठाया हमारा ड्रामा ही करता।
वो तो आप ज्ञानी थे, नहीं तो बाहर से झगड़ा करते
हैं,
वही तो वो, फिर भी आप भक्ति के मतलब शांत रहे, नहीं तो झगड़ा होता है, ऐसी बात
झगड़ा क्या, घर से निकालने की बात आ जाती है।
ब्रह्मा बाबा के पास जब न्यूज आती थी कि ये माता ज्ञान में आई, तो बाबा पूछते थे इसके घर में झगड़ा हुआ, नहीं मतलब माता अभी तक पक्की नहीं है,
झगड़ा होना चाहिए,
झगड़ा होना चाहिए, जब झगड़ा हुआ तो समझ में आया कि अभी पक्की है, धारणा पे चलने लगी है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है कि ये झगड़ा कराएगा। अगर बोलते हैं कि माता के घर में झगड़ा नहीं हुआ तो मतलब डाउटफुल है अभी।
आप सोचो एक छोटा सा अनुभव, हम जब ज्ञान में चले ना, तो हॉस्टल तो मैथ्स में, भाई हॉस्टल का नहीं है, मैं हॉस्टल में रहना, मैथ्स में खाना, मैथ्स में नहीं खाते हो अगर कंटिन्यू, तो आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। तो बोला नहीं, ये हॉस्टल में रहना है तो मैथ्स में खाना, हमने कहा हम रहे ना रहे हम मैथ्स में नहीं खाए, हमारा सारा बोरी बिस्तर निकाल के कमरे के बाहर रख दिया। और फिर आखिर पता नहीं क्या किया बाबा ने, जो मतलब
हिम्मत रखी ना, हिम्मत रखोगे तो मदद मिलेगी। अगर हिम्मत नहीं रखते, जैसे बाबा को पूछते हैं ना कोई कि बच्चे बाबा क्या करे, शादी करे क्या, माँ बाप नाराज हो रहे हैं, बाबा कहते ठीक है भले करो, अगर नाराज हो रहे हो तो एक एक साकार मोड़ लिया। फिर आगे बाबा ने बोला डैश डैश डैश, अगर बाप की याद में मर भी गए तो भी उच्च पद पाओगे। अगर बाप की याद में मर भी गए ना तो भी उच्च पद पाओगे। गंधर्व विवाह करना भी बाबा ने कहा कमजोरी है।
तुम याद में बैठ गया, छत पे चला गया, मेरे को बुलाया जा रहा है मीटिंग में, वहाँ कार्यकारिणी बुला रही है तुम्हारे नाम से ये कम्प्लेन है, तुम वहाँ जब माता जी के मंदिर पर आती होती तुम वहाँ कभी नहीं आते हो, पहले बहुत आते थे, तुम सीधा वहाँ से मुंह मोड़ के चले जाते हो।
ज्ञान झगड़ा होना चाहिए, तो थोड़ा सा झगड़ा होना चाहिए, हमारे जो रिश्ते संबंधी है ना वो भी विरोध करना चाहिए, थोड़ा हमारा नाम होना चाहिए थोड़ा कि भाई ये देखो ये ब्रह्मा कुमारी में चला गया, इसकी बुद्धि पलट ये हो गई, हिप्नोटाइज कर दिए ब्रह्मा कुमारी वाले,
नाम तो बहुत हो जाता है,
ऐसा थोड़ा नाम हो जाए तो फिर।
सुशील भाई मानस का पिताजी सर छोड़ा कोई रोए नहीं, अरे सारा गांव बोला इसका अच्छा हुआ उसका पति मर गया इसलिए रो नहीं रहा।
वो सूरज भाई ने उदाहरण दिया था ना, सूरज भाई ने एक क्लास में उदाहरण दिया था, गुजरात की दो माताएं दोनों का पति मर गया, सारे रो रहे, वो दोनों रोते ही नहीं, बोले क्या है ये दो माता है रोती नहीं, बोले हमारा पति तो जिंदा है, पिता पतियों का पति जिंदा है हम क्यों रोए,
प्राणों का पति,
बोले वो दूसरों को पति तो हमारा मरा है तुम क्यों रो रहे, वो दूसरे को पूछ रहे पति तो हमारा मरा है तुम क्यों रोते हो,
हमारा है तो बहुत बड़ा।
अच्छा ओम शांति। चिंतन का टॉपिक है इस पे, और चिंतन करना, मर्यादा छोड़कर किसी को सुख देना।